नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूढं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। आप सब लोग कैसे हैं?
सब अच्छे हैं मोदी। हाँ
हम लोगों ने छेड़ाला जी ग्रंथ पंडित दौलत राम जी के द्वारा रचित इस पर स्वाध्याय शुरू किया था पिछली इस बार, एंड हमने इसकी पहली ढाल पर चर्चा की थी जिस पर संसार की चार गतियों के दुखों का वर्णन है। संसार में जितने भी दुख उनका वर्णन है। यहाँ पर व्यवहार ने की अपेक्षा कथन था, संयोग की अपेक्षा कथन था। अब जो हम लोग इस बार बात करेंगे दूसरी ढाल में, ये वाली बात मतलब दूसरी ढाल ये जैन दर्शन का एक प्राण आने वाली है, क्योंकि ये वाली बात जो पहली वाली ढाल थी ना, ये वाली बातें तो वो थी जो हमको अभी तक पता थी। लाइक हमको सामने दिखता था कि देखो हम मनुष्य गति में हम पैसे कमाने जाते हैं कितना दुख होता है, हम लोग मतलब कितने सारे रोग हो जाता है तो कितना दुख होता है, या फिर हम जानवरों को देखते हैं एनिमल्स वी हैव सो वी सी दैम एंड वी नो ओके कितना दुख है उनके पास। समबडी किल्स दैम टू ईट दैम, समबडी टेक्स एडवांटेज ऑफ देयर यू नो ऑल द एफर्ट्स वी उनको हम बांध देते हैं। तो ऐसे ये वाले दुख तो हमको सामने दिखते थे। हम भी जब भी सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे कैसा लगेगा, हम सोचते हैं हमें डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता था। तो ये वाले दुख तो हम सबको पता थे, बट एक्चुअली नाउ अब क्या करने वाले पंडित दौलत राम जी दूसरी ढाल में, अब दुखों का एक्चुअल रीजन की बात करेंगे। दुख इस चीज से नहीं है, दुख किसी और चीज से है, तो उस पर हम लोग इस बार चर्चा करने वाले हैं। गुरुदेव श्री के टोटल इसके ऊपर 5 साढ़े 5 प्रवचन हैं जो कि हम लोग पूरा सुनेंगे, और जहां पर हो पाएगा हम वहां पर उनकी समरी भी लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट
ओके
और बहुत ही रिच ये वाली ढाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी।
जनन अभी
ओके जय श्री
डिस्कनेक्टेड।
ओके जय जिनेन्द्र। हु एल्स इज देयर हु हैज जॉइंड? हेलो नियति आंटी, यू आर हियर राइट? सचिन
या
जी,
आई एम हियर। नियति आंटी है,
प्रतिभा,
मैं हूँ।
प्रीति जी आपके हैं?
प्रीति जी है
ओके। रिजुल समीर
और
हैज जॉइन
समीर
बैक?
रिजुल ज्वाइन हुए हैं।
ओके
हाँ समीर रिजुल है। आई थिंक मानस, मानस आप ज्वाइन हुए क्या?
चलिए कोई नहीं। ओके तो फर्स्ट हम लोग आज क्या करेंगे, आप लोगों को एक क्वेश्चन है एग्जाम, सो वी वांट टू डिस्कस द एग्जाम पेपर फर्स्ट। हेलो
हाँ
नहीं
अनुभव
एवरीवन
जी,
को
वो एग्जाम पेपर एक बार ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। आई थिंक फ्यू पीपल हैड सम डाउट्स, सो
ओके, तो हमारा रिवीजन भी साथ में हो जाएगा, हम ऐसे कर लेते हैं।
हाँ जी।
ठीक है, आप लोगों के पास यदि हो, मैंने जो आंसर्स भेजे थे आपकी जो वैल्यू शीट थी, आप लोग वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए हम ले रहे हैं वाला एग्जाम का पेपर्स। ओके ठीक है, विल स्टार्ट। आप लोग कोई स्पेशल स्पेसिफिक क्वेश्चन हो फर्स्ट पहली ढाल से रिलेटेड कुछ भी, या फिर इतने दिनों आप लोगों ने पर्यूषण पर्व भी इतने अच्छे से मनाया तो उस बीच भी कोई भी क्वेश्चन हुआ हो। अब जो हम लोग यानी एक्चुअल अभी तक की जो बात थी वो तो एकदम लाइक प्राइमरी लेवल की बात हम लोगों ने करी, ये वाली बात तो कुछ भी नहीं थी। जैनिज्म दूसरी ढाल से स्टार्ट हो रहा है, और पहली ही लाइन में हम जब गुरुदेव जी का प्रवचन सुनेंगे आप लोग सीरियसली लाइक हम लाइक एक्चुअली समझेंगे हम क्या मानते थे और क्या है एक्चुअली जो पहला ही है, दूसरी ढाल का पहला क्षण। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन। आप सब लोगों ने किया ओपन पेपर?
हाँ अनुभव जी,
मानस सॉरी समीर रिजुल आप लोग हैं यहाँ पर? ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज द फोर गतिज मेक दिस जीवा सफर, ट्रू और फॉल्स? Why is it true or why is it false if your answer is whatever it is? So what was the correct answer for this question? Anyone? Hello.
समीर, रिजुल, मानस, कैन एनीवन आंसर?
फोर गतिज मेक दिस जीवा सफर, द आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स बट वाई, एनीबडी कोई भी बताएंगे तो प्लीज। सी अभी हम लोगों ने पाठशाला भी आज शुरू करी है, उसमें ही बच्चों की पहले क्विज हुई थी, तो आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि आप लोग को याद है कि भूल गए सब, इसलिए आपको बताना है। आंसर्स आपके सामने हैं, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों, इफ इट्स ट्रू वाई, इफ इट्स फॉल्स वाई। द फोर गतिज मेक दिस जीवा सफर, दैट्स व्हाट वी लर्न्ड इन द फर्स्ट ढाल, कि चार गतियों में दुख है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि चार गतियों में दुख है कि नहीं, चार गतियां इस जीव को दुखी करती हैं कि नहीं करती।
फॉल्स, आंसर इज फॉल्स।
आंसर इज फॉल्स, व्हाई?
क्योंकि दुख के चार गतियों में नहीं है, दुख अपने जीव की मोह के कारण से है, जो
वेरी
मिथ्या
गुड।
तो है जीव का। हाँ जी,
गुरुदेवश्री ने सबसे पहले ही बताया था कि देखो चार गति में, हमने भी जो मटेरियल में जो गुरुदेवश्री के नोट्स लिए हैं उसमें भी यही लिखा है कि देखो इधर पर वर्णन करेंगे चार गतियों में, लेकिन वर्णन चार गतियों के कारण नहीं है, इस जीव के राग द्वेष और मोह मिथ्यात्व के कारण ही है। ठीक है, तो चार गतियां में दुखी नहीं करती, नहीं तो अरहंत भगवान भी मनुष्य गति में, लेकिन वो दुखी नहीं है, उनको भी दुखी होना चाहिए। अरहंत भगवान के पास शरीर है, औदारिक शरीर है, समव शरण है, आसपास इतने सारे लोग हैं, तो महावीर भगवान जो समाज शरण में बैठे हैं वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो अपने उनके पास मोह राग द्वेष नहीं है, तो गति कोई दुख का कारण नहीं होती। ठीक है एवरीवन, कितने लोग हैं, मतलब हम लोग नहीं तो बाद में लेते हैं, जब सब ज्वाइन करेंगे तब डिस्कस कर लेते हैं पेपर। सचिन जी क्या बोलते हैं आप?
हाँ जैसे भी करना अनुभव जी, आई थिंक
अनुभव जी, मानस अभी ना मेरे फोन पे है क्योंकि कैनॉट कनेक्ट थ्रू हिज फोन, तो मतलब उनका वहां पे प्रॉब्लम है, तो सेलफोन से अभी मेरे फोन से वो सुन रहा है।
ओके। तो मैं पेपर डिस्कस करूँ ना, नहीं कोई स्पेसिफिकली जिसको डाउट्स और वो अभी आ नहीं पाए हो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, आई एम जस्ट सेइंग दैट।
हाँ
रतनी
जी,
ठीक है, अभी डिस्कस करें
हाँ
कि बाद
जी
में कर?
अनुभव जी, अभी एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं,
हाँ
बाद में अगर
बाद
यू नो
में जो
किसी को जो डाउट है वो
होगा।
स्पेसिफिकली यू नो क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर।
ओके ओके, तो फर्स्ट इज गति किसी को दुखी करते हैं फॉर द सिंपल रीजन कि गतियों से दुख हो तो अरहंत भगवान को दुखी मानना पड़ेगा, जो कि लॉजिकली नहीं जाता है सही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ऑल द जीवास ऑफ देवगति ड्वेल इन ऊर्ध्व लोक। तो देवगति के सारे जीव ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, ऐसा है कि नहीं? जो पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग करने के लिए आया था संवर नाम का देव, तो वो देव था बट वो मध्य लोक में आया, तो देवगति के देव नरक में भी रहते हैं तीसरे नरक तक, जो कि लड़ाते हैं असुर कुमार जाति के देव होते हैं। तो देवगति के देव मध्य लोक में भी पाए जाते हैं, यहाँ पर विंतर जाति के देव हैं, जिनको लोग अपन लोग बोलते हैं ना भूत है, हॉरर द सोल, और क्या बोलते हैं स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट। सो दीज आर द देवगति देव ओनली, विंतरवासी देव। सो नॉट अलोन इन ऊर्ध्व लोक, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन अधोलोक एंड मध्य लोक, सो इट्स फॉल्स। नाउ गति इन विच वी हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ आवर टाइम अवर पास्ट इज तिर्यंच गति, यस, क्योंकि काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तंधार, कि हमारा अनंत काल तो नित्य निगोद में ही गया है, और नित्य निगोद यानी कि तिर्यंच गति। इफ वी स्टिल डोंट अटेन सम्यक दर्शन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे एंड अप गोइंग टू नित्य निगोद अगेन। इट्स ट्रू और फॉल्स? इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन। हम लोग वापस निगोद में जा सकते हैं, लेकिन नित्य निगोद में नहीं जा सकते, बिकॉज नित्य निगोद इज दिस प्लेस जहां से आज तक कोई बाहर निकला नहीं, एंड वंस यू गेट आउट ऑफ नित्य निगोद यू कांट गो बैक टू द नित्य निगोद अगेन, यू गो टू इतर निगोद। ओके, तो यदि हमने सम्यक दर्शन नहीं किया तो हम निगोद तो जा सकते हैं, बट नित्य निगोद नहीं जा सकते, क्योंकि वहां से जीव निकलते हैं, वहां वापस जाते नहीं है, जहां से वापस नहीं जाते उसको नित्य निगोद कहते हैं, ठीक है। बट निकलने का टाइम इज इनफाइनाइट, दैट इज हेडक्वार्टर, दैट्स आवर ओरिजिनेटिंग पॉइंट। द सीक्वेंस ऑफ टेकिंग बर्थ इन फोर गतिज इज, फर्स्ट यू टेक बर्थ इन निगोद, देन यू बिकम स्थावर, देन यू बिकम त्रस्त, देन यू निरगति, गो टू निरग गति, देन मनुष्य गति, एंड देन देव गति। इज इट ट्रू और फॉल्स कि देयर इज नो सच सीक्वेंस? भरत चक्रवर्ती के 1623 पुत्रास एंड 923 पुत्र, आई एम नॉट श्योर अबाउट, देर वर 123 पुत्रास ऑफ भरत चक्रवर्ती और 623 पुत्र थे, 123 थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, ठीक है, आई कम फॉर कन्फर्म इट। उनके पुत्र डायरेक्टली नित्य निगोद से निकले, उन्होंने कुछ क्षुद्र भव धारण किए, मतलब कुछ बीच में छोटे मोटे भव एकदम नेग्लिजिबल टाइम के लिए, अंतर मुहूर्त में ही वो नित्य निगोद से निकले, सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। जैसे उनका जन्म हुआ वो थोड़े बड़े हुए, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कह रहे हम तो नित्य निगोद से आए हैं, तो उनको इतनी शर्म आई कि वो जीवन भर कुछ बोले ही नहीं, कि उनने बोला अब हम क्या बोले, हम अनादिकाल निगोद में बिता दिया, हम क्या बोले। तो वो लोग शांत रहते थे, तो मुनिराज ने बोला, भरत चक्रवर्ती ने पूछा मुनिराज से ये लोग शांत क्यों रहते हैं, तो उनने बताया कि ये लोग सीधे निगोद से हैं और ये लोग इतने लज्जित हैं, ये लोग को तो बस मोक्ष चाहिए। और फिर उन लोगों ने साथ में दीक्षा धारण करी और वो सीधे के सीधे वहीं से ही मोक्ष चले गए। तो वो ना तो कभी देवगति में गए ना कभी नरक गति में गए। इसके लिए ऐसा कोई सिक्वेंस नहीं कि आप निगोद से स्थावर बनो, फिर त्रस बनो, फिर नरक, फिर मनुष्य, फिर देव, ठीक है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, मनुष्य गति से कहीं भी जन्म ले सकते हैं, देयर इज नो सीक्वेंस। सो वो बस हमने वहां पर पंडित दौलत राम जी ने एक सीक्वेंस को बस उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, इंद्रिया मेक जीवाज नो एंड देयर फोर जीवाज हैव बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंद्रियाज दे हैव। नो डाउट जीवाज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंद्रिया, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, संगी जीव, असंगी जीव, करेक्ट। बट क्यों इंद्रियों के बेसिस पर हम उनको क्यों करते हैं, क्योंकि इंद्रियों से वो जानते हैं, इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से जीव को ज्ञान होता है, ऐसा है क्या?
नहीं,
जीव को ज्ञान तो उसके ज्ञान गुण से होता है, इंद्रियां तो विंडो है, जैसे कि हमारे घर की विंडो से बाहर की कार्स नहीं दिखती हैं, विंडो को थोड़ी कुछ दिखता है। हाँ, आप विंडो से आप देखोगे तो आपको कार्स दिखेंगी, विंडो को कार नहीं दिखती है। ऐसी दिस आईज आर द विंडोज, तो देखने वाली विंडो नहीं है, ऐसी देखने वाली आईज नहीं है, देखने वाला तो अंदर ज्ञान है। तो पांच इंद्रियों के बेसिस पर जीवों के प्रकार कहे हैं, उनका रीजन ये नहीं है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, उनका रीजन ये है कि ये शरीर के चिन्ह जो कि जीव की ज्ञान की प्रकटता को बताते हैं। तो फंडामेंटली यहाँ पर ये रॉन्ग था कि इंद्रियों से जीव जानता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीव इंद्रियों के आधार से जानता है। मतलब वी टेक वी, हम लोग देखते तो बाहर, देखता तो मैं ही हूं लेकिन विंडो से नहीं देखता हूं। हाँ, यदि मुझे बाहर की कार देखनी है तो मैं वॉल को देख के नहीं देख सकता हूं, तो मुझे विंडो को, विंडो से झांकना पड़ेगा। तो पांच इंद्रियों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन इज नॉट बिकॉज इंद्रियों से, इंद्रियों जीव को जानाती हैं। द लैंग्वेज वॉज इंद्रियाज मेक जीवाज नो, नो दे डोंट मेक यू नो, यू नो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस इंद्रिया, इस कारण उसके कारण उसका क्लासिफिकेशन है। ओके, इस पे किसी को क्वेश्चन, डाउट है? हेलो, इस पर किसी को डाउट है? इंद्रियाज, ये वाला थोड़ा टफ था क्वेश्चन, बिकॉज इंद्रिया मेक जीव नो, दे डोंट मेक जीव नो, जीव नो एंड इट टेक्स द हेल्प ऑफ इंद्रिया, बिकॉज इसको इंद्रिय ज्ञान है, वो इतना पराधीन है, इतना डिपेंडेंट है दैट इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ इंद्रिया. ओके, एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?
नहीं अंबू जी,
ओके, अरिहंत परमेष्ठी संगी पंचेंद्रिय जीव, ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू कि वो संगी पंचेंद्रिय, क्योंकि उनके बॉडी है, उनके मन भी होगा, द्रव्यमान है, लेकिन वो आंख से नहीं देखते हैं, कान से नहीं सुनते हैं, बिकॉज ही हैज केवल ज्ञान. सो नाउ ही डू नॉट टेक हेल्प ऑफ इंद्रिया, बट स्टिल ही हैज इंद्रिया इन द बॉडी, राइट? सो लुकिंग एट हिज बॉडी एज ही संगी पंचेंद्रिय, लुकिंग एट हिज केवल ज्ञान, ही डज नॉट टेक हेल्प ऑफ एनी ऑफ द इंद्रिया और मन. ओके, सो इट्स ट्रू दैट ही हैज फाइव इंद्रिया. नाउ सविपाक निर्जरा इज हैपनिंग टू एवरी जीवा एवरी मोमेंट. सविपाक मतलब आफ्टर द फ्रूशन, फ्रूडिशन हो जाता है जब कर्मों का. तो जैसे कि मैंगो समर के सीजन्स में अपने आप फ्रूट होते हैं, ऐसे ही अपना टाइम आने पर कर्म अपने आप उदय देकर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा. तो ये तो प्रत्येक जीव को हर समय उसके कर्मों के उदय आ रहे हैं, तो प्रत्येक जीव को हर समय सविपाक निर्जरा हो रही है. ओनली मिथ्या दृष्टि जीवास टेक बर्थ इन भवनत्रिक देवास, भवनवासी जंतर एंड ज्योतिष. सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीवों का जन्म होता है भवनत्रिक देवों में. बिल्कुल छहडाला ग्रंथ में हम आगे पढ़ेंगे, प्रथम नरक बिन छठभू ज्योतिष, यहाँ वहां पर आएगा कि सम्यक दृष्टि जीवों का जन्म कहाँ कहाँ नहीं होता है. तो वहां पर ज्योतिष में, भवनवासी में और व्यंतर में सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते हैं, तो सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीव इन भवनत्रिक देवों में जन्म लेते हैं. तो ये सही है, ठीक है. स्थावर जीवा, दो इंद्रिय जीवास, त्रयेंद्रिय जीवास, चतुरेंद्रिय जीवास आर असंगी टू. यस, जब पांच इंद्रिय जीव भी असंगी हो सकते हैं, तो उनके नीचे के चार इंद्रिय जीवा वगैरह तो ऑब्वियसली उनके पास मन नहीं है, और जिसके पास मन नहीं है वह असंगी कहलाते हैं. हम इनको असंगी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके पास आगे की इंद्रिया ही नहीं है, तो मन होने का क्वेश्चन नहीं होता है. बट एक्चुअली जस्ट बिकॉज दे आर दो इंद्रिय तीन इंद्रिय डजंट मीन दे डू नॉट हैव आईज, डजंट मीन दे डू दे कैन हैव मन ऑल्सो, दे कैन नॉट हैव मन. तो ये लोग भी असंगी हैं लेकिन कहे नहीं जाते क्योंकि इनके पास इंद्रिया ही नहीं है पूरी, तो मन तो क्या ही होगा. ओके, ट्रू एंड फॉल्स, एवरीबडी इज फाइन विद इट?
हाँ नंबू जी,
ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक. द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज त्रियंशकृति निगोद. ऑब्वियसली निगोद में एक इंद्रिय जीव अक्षर के असंख्या अनंत विभाग ज्ञान होता है, इसलिए दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. इन द एब्सेंस ऑफ मन अ फ्यू संसारी जीवास कैन नॉट थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ देयर सोल्स एंड दस कैन नॉट अटेन सम्यक दर्शन. मन के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए संगी पंचेंद्रिय जीव को ही सम्यक दर्शन की पात्रता होती है. क्यों? क्योंकि मन होता है तभी हम आत्मा का विचार कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन दिया, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, ओके, थर्ड, ओके. द कर्मा हुज डिस्ट्रक्शन इज निमित्त इन फ्यूशन ऑफ वितरागता बिकम्स निमित्त इन राग एंड द्वेष अनलेस डिस्ट्रॉयड. सो इट हैड टू क्वेश्चंस एक्चुअली. नेम द कर्मा विच हुज डिस्ट्रक्शन इज निमित्त इन फ्यूशन ऑफ वितरागता. बाय डिस्ट्रॉइंग विच कर्मा डू वी अटेन वितरागता? नेम द कर्मा.
What is the question?
If I have to attain Vitrakta, which karma needs to be destroyed? Out of the eight karmas,
चार घाती कर्म destroy होना
चाहिए. घाती कर्म.
Alone Vitrakta alone. I just want Vitrakta. I don't want केवल ज्ञान. I don't want केवल दर्शन.
तो मोनीय कर्म.
यस, सो विच मोहिनी कर्म एग्जैक्टली इफ आई वॉन्ट वितरागता?
दर्शन मोहिनी.
फॉर वितरागता सी दर्शन मोहिनी विल गिव मी द बिलीफ, करेक्ट बिलीफ, सम्यक दर्शन. बट वितरागता इज विदाउट राग एंड द्वेष, नॉट डूइंग राग एंड द्वेष. वाई डू वी डू राग एंड द्वेष? बिकॉज ऑफ विच कर्म? मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ विच कर्म?
दरिद्र होने कर्म.
चारित्र मोहिनी है, सो टू अटेन विद रास्ता चारित्र मोहिनी कर्म इज टू बी डिस्ट्रॉइड. सो इफ चारित्र मोहिनी कर्म इज नॉट डिस्ट्रॉइड, वॉट डू वी डू? वी डू राग एंड द्वेष अनलेस डिस्ट्रॉइड. दैट वॉज द क्वेश्चन इन दिस. सो द कर्मा हुज डिस्ट्रक्शन इज निमित्त इन फ्यूजन ऑफ वीतरागता, दैट इज सिंपली पुट चारित्र मोहिनी कर्मा इज निमित्त इन राग एंड द्वेष अनलेस डिस्ट्रॉइड. इफ यू डिस्ट्रॉय इट यू बिकम वीतरागी, इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय इट यू डू राग और द्वेष. सिंपल. एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Okay. Next, the jivas who will never leave this domain of life and death ever are called abhavya jiva. They will never attain salvation because they do not have patrata, bhavitavyata, honhar, capability, ability to attain sammyak darshan. Okay. Fifth, the one who is vitragi, sarvagya, and hitobdeshi is known as Bhagwan. Bhagwan is Vitragi, Sarvagya, and Hitopdeshi. See, when we add Hitopdeshi, it is called Apt also. A-P-T-A, Apt. In Ratnakarani Shravakachar, Swami Samant Bhadradev has called one who is Vitragi and Sarvagya and Hitopdeshi as Apt. That is Bhagwan. ठीक है? चलिए, यहाँ तक ठीक है ना? Simple था एकदम. Now case study. The case study has a story. It's taken from the scripture Aradhana Kathakosh. Okay, ये Aradhana Kathakosh नाम का एक ग्रंथ है, उसमें से एक छोटी स्टोरी है. King Abhay Ghosh, the king of city of Kakandi, was once roaming around in his city. There he saw a fisherman carrying with him on his wood stick a turtle with all its legs tied to it. The turtle was alive with its chakra. King Abhay Ghosh cut all the legs of the turtle. The turtle died with sheer pain and suffering. Later, soul of that turtle took birth as the son of the same king and was named Prince Chandvek. Once, King Abhay Ghosh witnessed a moon eclipse and got Vairagya from the sansar. He made Chandvek the king of his kingdom and he himself became monk. One day while Muni Abhay Ghosh was meditating, because of past animosity, Chandvek approached him and cut his both hands and feet with his chakra. While Chandvek was being happy to taking revenge, Muni Abhay Ghosh concentrated on his thought and attained Keval Gyan and went to Moksha. What is happening in this? Actually, ये वाली कहानी इसलिए ली थी क्योंकि चार गति के दुखों का वर्णन बहुत अच्छे से करती है. मतलब चार गति के दुखों का मतलब चार गति की विचित्रता, मतलब संसार की विचित्रता का वर्णन. क्या हुआ? एक राजा है. He is going, he is roaming around and he sees a fisherman. Like fisherman is carrying a turtle. अचानक से इसको भाव होता है, जैसे कि हम लोग को कभी कभी होता है ना, हम गार्डन में बैठे हैं और हमने एक अच्छा सा फूल देखा, द फ्लावर वी सी अ फ्लावर, सो वी वांट टू प्लक इट समहाउ, और वी चिट ऑन अ मैट, वी सिट ऑन अ मैट, तो हम मैट को कभी कभी तोड़ने लगते हैं, वी सिट ऑन द ग्रास, वी स्टार्ट प्लकिंग ऑफ द ग्रास एज वेल. हम ऐसा करते हैं ना, अचानक से हमको देखे वो एकदम से क्रेविंग्स आती है वो करने की, राइट? ऐसा होता है, राइट?
हाँ जी.
जैसे कि whenever we go to garden, we are just craving to like touch the, you know, like you see butterfly, you want to touch it. So ऐसे किसी किसी को craving आती है. तो इनने उस turtle को देखा तो इनको अचानक से लगा इनके हाथ में तलवार थी, तो इनको लगा इसकी देखो अकेली shell दिख रही है पीछे की, तो इसके चारों पैर काट दे तो अकेली shell बचेगी, right? तो इनको ऐसी मतलब एक craving हुई और उन्होंने उसके चारों पैर काट दिए. क्या बचा अकेली टर्टल का? जो बीच में शेल होता है वो बचा. सो नाउ टर्टल को बहुत ज्यादा तीव्र गुस्सा आया, तो टर्टल बहुत पेन के साथ मरा. इसको क्या बोलते हैं? पेन से मरना, आर्त ध्यान, राइट? तो पेन के साथ उसका मरण हुआ और उसने बंद किया, निदान किया कि मैं इस राजा का पुत्र बनूं. तो मरते टाइम उसने निदान किया और वो उसी राजा का, जिस राजा ने उसको मारा उसी राजा का पुत्र हो गया. आप देख रहे हो संसार की विचित्रता कैसी है. मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो चिल्ड्रन हैं, जरूरी नहीं है हम पास्ट में एकदम फ्रेंड फ्रेंड रहे होंगे इसलिए हम लोग एक ही फैमिली में हैं. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ही पिछले भव में अपने फैमिली वालों को किसी को मारा हो और वो आज मेरे ही बेटे हो गए हों, मेरे ही पेरेंट्स हो गए हों, मेरी फैमिली में मेरी फ्रेंड हो गए हो, ऐसा हो सकता है। तो सी कितना मतलब संसार कैसा है। आप लोगों ने 18 नातों की कहानी सुनी है, 18 रिलेशंस, मैंने सुनाई होगी क्या?
नहीं
समीर रिजुल इफ यू रिमेम्बर 18 नातों की कहानी, उसमें मतलब नहीं सुनी पक्का। कितने लोग हैं हम लोग यहाँ पर अभी? नीति आंटी आप अभी तक हो राइट? हेलो ओके, कितने लोग हैं हम लोग टोटल? 4-5 लोग हैं।
हाँ हम हैं,
आई एम जस्ट
हम
ट्राइंग
हैं।
टू कंफर्म कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज चलेगी कि इंग्लिश। आई एम जस्ट सेइंग, कहानी में हिंदी में सुना इंग्लिश में? दैट कहानी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हिंदी
हिंदी में
में
बोलूंगी
सुना
मैं?
हो, बच्चों को नहीं आएगा तो वो लोग बोलेंगे कि हमें
हाँ जब नहीं
इंग्लिश
आए तो
में
आप लोग प्लीज
चाहिए।
पूछ लेना। हाँ बिकॉज दिवाली
हाँ
थोड़ी हिंदी में, इसमें थोड़ी रिलेशनशिप है, तो आप लोग क्या रिलेशनशिप ज्यादा होते नहीं ना यूएस में, तो आई डोंट नो व्हाट आर द इंग्लिश वर्ड। अंकल अंकल ही बोलता रह जाऊंगा। ठीक है चलिए सुनिए, ये वाली कहानी सुनना। ये चार गतियों मतलब इसमें संसार की विचित्रता बता रहे हैं। क्या हुआ एक बार? ओके देयर वॉज अ एक सेठ था, ठीक है, और वहीं पर ही एक वेश्या रहती थी। ठीक है, तो एक सेठ ने एक वेश्या को वेश्या के साथ रहता था, उसके घर में रखता था। ठीक है, अब एक बार वेश्या क्या हो गई, वो गर्भ से हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी। तो सेठ को बहुत यानी कि उससे मतलब जुगुप्सा आई, घृणा आई, और उसने उसको छोड़ दिया, उसने अपने घर से उसको निकाल लिया। तो वेश्या वापस अपने घर पे चली गई। अब क्या होता है, टाइम बीतता है और ये वेश्या जो है ये दो जुड़वा जुड़वा पुत्रों को जन्म देती है। ठीक है, जुड़वा मतलब क्या बोलते हैं उनको, ट्विंस को जन्म देती है, एक लड़का एक लड़की, अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक है नो, अब ये क्या करे, कैसे पाल, इसके पास इतने पैसे भी नहीं रहेंगे। तो वॉट शी डज, वो जो बच्चा लड़का है उसको अपने फ्रंट वाले डोर वाले गेट पर ऐसे रखकर गेट के बाहर छोड़ देती है। तो वहां से एक अंकल जा रहे रहते हैं, वो देखते हैं कपल जा रहे रहते हैं, वो देखते हैं अरे यहाँ पर बच्चा ऐसे रखा हुआ है गेट पर। वो इधर उधर ढूंढते हैं तो वहाँ कुछ रहता नहीं है, गेट पर बाहर से लॉक लगा रहता है। तो उनको लगता है और उनके पास बेटा नहीं होता है, तो वो उस बेटे को उठाकर लेके चले जाते हैं। ये अपनी जो बेटी रहती है द डॉटर, वो उसको दूसरे अपने घर के पीछे वाले गेट पर रखती है, वहां पर ऐसे रख देती है। वहां से दूसरा कपल जा रहा रहता है, दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी चाइल्ड। सो वॉट डू दे डू, वो देखते हैं ट्राई करते हैं कौन है, और वो लोग भी इनको इतना अच्छा लगता है वो उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है नाउ, अब यहाँ पर वो उनका उसका बेटा चला गया, वहां पर उसकी बेटी चली गई। अब ये बेटा यहाँ पर अच्छे से बड़ा हो रहा है, बहुत टाइम निकल जाता है, वहां पर बेटी बड़ी हो रही है। तो बहुत टाइम ये लोग बड़े हो जाते हैं, इनकी शादी की बात चलती है। तो ढूंढते 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 अल्टीमेटली क्या होता है, ये वाले सेठ और वो वाले सेठ मिलते हैं और इन दोनों की शादी करा देते हैं। किन दोनों की शादी हो रही है?
भाई
कि
बहन,
आप लोग को
भाई
आंसर देना पड़ेगा। हाँ किस किस की शादी हो रही है? वो हेलो, यू कैन हियर मी राइट?
बहन,
हाँ मतलब वो एक एक सेठ था, एक वेश्या थी, उसके कारण वो गर्भवती हुई, उसने दो जुड़वा लोगों को जन्म दिया, पुत्र उसका किसी और सेठ के साथ चला गया, पुत्री किसी और के साथ चली गई, एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि उन दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है ना, अब इन दोनों की शादी होती है तो चलो कोई बात नहीं, ये लोग रह रहे हैं आराम से। अब एक बार ये जो लड़का है ना द हस्बैंड, वो उसको बाहर किसी दूसरे काम से जाना रहता है। ठीक है, तो ये जाता है बाहर किसी काम से, तो ये उसी नगरी में आता है जहां पर इसकी अभी जो माँ है ना वेश्या वो रहती है, और ये जाता है एक्चुअली वेश्या के घर पर, और ये वहां पर जो उसकी माँ थी उसके साथ ही रहता है। ओके, तो अब जो ये वेश्या है ना ये वापस प्रेग्नेंट होती है और ये वापस एक पुत्र को जन्म देती है। यू गेटिंग द स्टोरी का फ्लो?
हाँ जी
एक वेश्या पहले दो बेटों को दो अपने बच्चों को जन्म दिया, उन बच्चों की शादी हो गई, एंड जो उसका लड़का है वो वापस आता है और वो अब उस वेश्या के साथ रह रहा है, और वो वेश्या फिर प्रेग्नेंट हो गई है, वो अब अपने एक बच्चे को वापस जन्म देगी। अब ये जो जो दूसरी बच्ची है ना, जो उसकी पत्नी थी एक्चुअली उसकी बेटी, इसका नाम है कमला, इसका नाम कमला रहता है। ठीक है, तो अब ये उसको ढूंढते ढूंढते आती है, तो अभी क्या रहता है, ये जा रही रहती है, मतलब तो ये रास्ते में आ रही रहती है, तो इसको क्या रहता है, इसको रास्ते एक मुनिराज मिलते हैं, तो मुनिराज के दर्शन करती है। तो मुनिराज से पूछती है, मुनिराज आप मुझे हमारा थोड़ा बताओ, हमारे पूर्वजों के बारे में बताओ और सुखी होने का मार्ग बताओ। तो अब मुनिराज उसको बताना स्टार्ट करते हैं क्या हुआ था पूर्वजों पे। ये लोग मित्र थे दोनों, ये लड़के, ये जो पति पत्नी हुए ना, ये दोनों मित्र थे। ये लोग जा रहे थे रास्ते में, तो जंगल से निकलते थे लोग पढ़ने, जब जाते थे ना, उनकी सिटी दूसरी थी और उनका स्कूल दूसरी जगह था, तो ये लोग जंगल से निकलते थे। तो जंगल में क्या हुआ, एक बार एक मुनिराज का संघ आया था, उस संघ में मुनिराज अलग थे, आर्यिकाओं का अलग संघ था। तो क्या हो रहा था कि एक मुनिराज उसमें ऐसे थे संघ में कि एक तो ससुर जी थे और उनकी बहू थी, मतलब एक फादर इन लॉ थे और उनकी डॉटर इन लॉ थी, ठीक है। तो डॉटर इन लॉ थी आर्यिका और फादर इन लॉ थे वहां पर मुनिराज, और एक क्या था, एक माँ थी और एक उनके बेटे थे, ठीक है। तो माँ थी आर्यिका और उनके बेटे थे, तो जो बेटे हैं वो थोड़े 20-22 ईयर्स के होंगे, उनकी जो माँ रही होंगी वो 40-45 ईयर्स की होंगी, राइट। तो वो वृद्ध थी और बेटे यंग थे। ऐसे जो ससुर जी थे वो थोड़े एजेड रहे होंगे और जो उनकी बहू थी वो थोड़ी यंग रही होगी, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं मुनिराजों के संग में, क्या होता है, एक दूसरे की कुशल पूछते हैं सुबह के टाइम। तो ये मुनिराज आर्यिका बेटा अपनी माँ से, तो बेटे वाले मुनिराज अपनी माँ वाली आर्यिका से, और बहू वाली आर्यिका अपने ससुर जी वाली फादर इन लॉ वाली मुनिराज से उनकी शरीर की कुशल पूछ रहे थे। तब यहाँ से ये लोग निकलते हैं, तो ये लोग जा रहे थे ना दोस्त लोग, ये लोग ऐसी हंसी करते हैं, देखो प्रकृति की विडंबना, बूढ़े को तो जवान लड़की मिली और जवान को बूढ़े लड़की मिली, ऐसा इन लोगों ने वहां मजाक बनाया। आप लोग को समझा क्या हुआ, क्या उन्होंने
हाँ
बस
जी,
ऐसी मजाक
हाँ जी,
बनाते ना किसी को देखकर, अरे देखो कैसी प्रकृति की कैसी विडंबना है, क्या है संसार में, बूढ़े व्यक्ति को तो जवान स्त्री मिली और जवान को बूढ़ी स्त्री मिली, बेटा था और उसकी माँ थी और जो फादर इन लॉ थे और उनकी डॉटर इन लॉ थी, ये दोनों तो ऐसे बात कर रहे थे, और इन्होंने ऐसा जस्ट मजाक मजाक में सब हंसने लगे। उसके कारण इन सबको इतनी आयु का बंध हुआ जिसके कारण इन लोगों ने ऐसा ऐसा लिया। वो वेश्या बनी पहले, तो वेश्या अलग, फिर उसके दो पुत्र हुए, दोनों पुत्रों की शादी, और अब वो, और जो अभी इनका पुत्र होगा ना उसका नाम वरुण है, जो कि बेटे का और उसकी माँ वेश्या का जो पुत्र हुआ है। तो अब ये जो कमला ये सुनकर एकदम उसको जाति स्मरण हो जाता है, और वो वहीं पर ही अब उसको इतना वैराग्य आता है, वो वापस जाती है जहां पर ये इसका पति वो वेश्या का घर है ना, वहां पर जाती है, वहां पर अभी वेश्या बाहर थी, इनका जो पुत्र हुआ नया वरुण वो झूले पर झूल रहा रहता है। तब वो झूल उस बच्चे के पास जाती है और उससे बोलती है, सुनो बेटा मेरे तुम्हारे साथ 6 रिश्ते हैं, सबसे पहले तो तुम मेरी माता के पुत्र हुए तो मैं तुम्हारी बहन हूं, ठीक है, वेश्या का पुत्र हुआ तो मैं तुम्हारी बहन हूं, फाइन।
बराबर है,
फिर
बराबर।
तुम मेरी पति के पुत्र हुए तो तुम मेरे पुत्र हो, ठीक है। हेलो, आप लोगों को समझे, रिलेशनशिप समझना, हाँ, पहले तुम
हाँ
मेरी
जी,
माता के
हाँ जी,
पुत्र तो मेरे भाई, तुम मेरे पति के पुत्र तो मेरे पुत्र, मेरे पति की पत्नी मतलब मेरी जो वेश्या है उसके उसके तुम पुत्र हुए, मेरी पति की पत्नी के पुत्र हुए इस कारण मेरे पुत्र हो। अब मेरे जो तुम्हारी माँ है ना वो मेरी सास है, राइट, क्योंकि वो मेरे पति की माँ है, तुम उसके पुत्र हुए तो क्या कहते हैं उसको, मेरे पति के भाई हुए, राइट, तो क्या कहलाते हैं वो, मुझे रिलेशनशिप इतने अच्छे से आते नहीं है, देवर, देवर, देवर कहलाते, राइट, इफ आप लोग को भी याद हो कभी इंडिया के रिलेशंस। तो तुम मेरे पति के भाई होने पर तुम मेरे क्या हुए, देवर, मतलब तुम मुझे भाभी बुलाओगे टाइप, राइट, करेक्ट। हेलो,
हाँ,
ये तीन रिलेशनशिप समझे, चौथा रिलेशनशिप क्या होगा, हेलो,
दे नहीं,
पहले अलग अलग समझना, ओके। सबसे पहले तो वो उसका भाई हुआ क्योंकि उसकी माँ का पुत्र है, फिर क्या हुआ नेक्स्ट, वो उसका ही पुत्र हुआ क्योंकि उसके पति का पुत्र है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, उसका ही देवर हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसके पति का भाई है। हेलो, आप लोग को नहीं समझ रहे क्या? मतलब आप लोग थोड़ा कुछ बोलो, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हेलो,
नहीं,
आप लोग
बराबर
पहले
है, बराबर है।
कहानी का फ्लो समझो ना।
अरुण अंडरस्टैंड,
कौन नहीं समझा? हु इज देयर?
वो जो
ओके रिजुल, सी यू गॉट द फ्लो ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज हैपनिंग?
यस
ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, सी नाउ, हिज हूएवर गिव बर्थ टू दिस दिस न्यू बॉय वरुण, ओके, हु इज लाइंग इन द झूला, झूला पालने में जो बच्चा है वो इसके पति का और इसकी माँ का पुत्र है, राइट? तो अलग अलग देखना, ओके। सी, जो इस पुत्र की मम्मी है वही मेरी मम्मी है। वो कमला जो है, वो जो बच्ची है, वो लेडी जो है, वो उससे बोल रही है कि देखो तुम जो जिस जो तुम्हारी मम्मी है वही मेरी मम्मी है एक्चुअली, है ना? तो तुम मेरे क्या हुए, भाई हुए ना? हेलो, नहीं
हाँ जी,
आपको नहीं समझ रहा तो प्लीज पूछो पहले। फर्स्ट सी, इफ वी आर लाइक हमारे मम्मी पापा एक होते हैं तो हम दोनों भाई बहन कहलाते हैं, राइट? तो जो उसकी मम्मी है वो ही इसकी मम्मी है, तो इसके लिए ये दोनों हो गए भाई भाई। फिर ये किसका पुत्र है? इसके इसके पति का पुत्र है, इसका जो पति है उसका बेटा हुआ ना ये, तो इसके पति का है मतलब इसका भी पुत्र हुआ, तो ये इसका बेटा भी है, ठीक है? हेलो, नहीं वो
जी
कंफ्यूजिंग हो गया। मैं एक बार पहले जल्दी से रशी कर जाता हूँ, मैं आपको 6 रिलेशंस बता देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये इसका पुत्र हुआ क्योंकि इसके पति का पुत्र है, इसका भाई हुआ क्योंकि इसकी मम्मी के पेट से निकला है, फिर इसकी मम्मी इसकी सास हुई, राइट? जो लड़के की माँ है वो इसकी सास हुई क्योंकि इसके पति की माँ है, तो सास का पुत्र हुआ मतलब इसका देवर हुआ, मतलब इसके पति का भाई और इसका देवर, ओके। नेक्स्ट नाउ, इसके क्या बोलते हैं, धनदेव इसका भाई था, राइट? इस लेडी का, इसकी पत्नी का ही धनदेव क्या था, भाई था, और भाई का पुत्र हुआ तो मतलब इसका भतीजा हुआ। सचिन जी, आई मीन इफ यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर, भतीजा हुआ, समझ रहे हैं? जैसे वो उसको अंकल अंकल बुलाएगा, मतलब आंटी हो गई है,
नेफ्यू
राइट? फिर ये 4 रिलेशनशिप हो गए, ओके। अब नाउ जो धनदेव है ना, वो क्या हुआ, वो उसकी मम्मी का पति है, किसकी, इस लड़की की। तो धनदेव यदि इसकी मम्मी का पति है तो इसका क्या हुआ, पिता हुआ, और उस पिता का ये पुत्र है, सॉरी, इस पिता का ये भाई है, तो ये इसका चाचा हुआ, ये जो बच्चा है उसका क्या हुआ, अंकल हुआ। बहुत मतलब रिलेशनशिप इसका, वो चार्ट बना के मुझे पूरा एक डायग्राम बना के देना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत कंफ्यूजिंग है। सी, इसका जो पति है ना, इस लेडी का, उस पति वो कौन है, इसकी मम्मी का पति है क्योंकि इसकी मम्मी से उसको बेटा हुआ है, राइट? तो मम्मी का पति क्या कहलाता है, पिताजी कहलाता है, तो ये इसका जो पति है वो इसका पिता हुआ, और उस पिता का ये पुत्र है, इस पिता का छोटा भाई है, पहले तो इस पिता का छोटा भाई है क्योंकि ये भी मम्मी से हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, चाचा हुआ। और मैं जो मेरी बसंत बसंत तिलका, मतलब कौन, इसकी जो मम्मी, यार इसलिए इंडिया में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है कि वी डू नॉट हैव एनी इंग्लिश वर्ड्स फॉर रिलेशनशिप, वी हैव अंकल आंटी, मौसी जी के लिए भी वही होता है, तो यहाँ पर इसलिए तुम लोग को थोड़ा टफ पड़ेगा मानस रिजुन, बट इट्स ओके। जो उसकी मम्मी है ना, उसका भी पति धनदेव है, और जो मैं हूँ, मेरा पति भी धनदेव है, मतलब जो मेल है, जो जिसके कारण अभी ये पुत्र हुआ है, तो हम दोनों क्या हुए, हम दोनों देवरानी जेठानी हुए, राइट? गेटिंग इट? अरे यार, मतलब वन हस्बैंड टू वाइफ, तो हम दोनों वो हुए, ठीक है? और जब क्या बोलते हैं ये धनदेव,
आई डोंट अंडरस्टैंड।
I know. I'll make a chart of this story and tell you the six relationships, but just understand it that it's very complicated relationship. And with each one of these, everybody has six relationships. One is with their mother, one is with their husband, with her husband, and one is with the newly born boy. So 6 plus 6 plus 6 is equal to 18 relationships are there. I'll send a PPT on this explaining the relationship, okay? But here is to say this, कि देखो संसार में ऐसे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि माता ही पत्नी बन जाती है, बहन ही पत्नी बन जाती है, फिर हमारे जो पुत्र होते हैं वो भी पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से, जिसको मारा हो जिसको नहीं मारा हो, जो पूर्व भव में जिसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं है वो शायद आज पुत्र बन जाए। इस कारण ये संसार बहुत विचित्र है, इसके कारण मुनिराज यहाँ से वैराग्य लेके दीक्षा लेते हैं। ये वाली जो स्टोरी है ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में संसार भावना है, ग्रंथ है एक कार्तिकेय मुनिराज का, उसमें संसार भावना है उसमें दी हुई है। आप लोग की यदि हिंदी अच्छी हो और जिनको रिलेशन समझ में आते हो तो उसका पेज नंबर 28 है, आप लोग देख लीजिएगा। हम मतलब पाठशाला के लिए मैं एक चार्ट बनाकर भेजूंगा तो उसमें आप लोग समझेंगे एक्चुअली क्या रिलेशनशिप है। मैं नाम लूंगा यहाँ से तो वो समझेगा नहीं, तो यदि मैं एरोज बनाकर बताऊंगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, स्टोरी समझी ना लेकिन क्या हो रहा है? हेलो, रिलेशनशिप समझे हो नहीं समझे हो? एवरीबडी रिजुल,
कुड यू रिपीट द क्वेश्चन?
स्टोरी, डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी?
नो,
रिलेशनशिप, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट रिलेशनशिप, आई एम आस्किंग अबाउट द स्टोरी, व्हाट द स्टोरी वाज अबाउट।
यस,
यू गॉट द स्टोरी राइट। पहले एक लेडी थी, उसके दो ट्विंस हुए, दोनों ट्विंस अलग अलग जगह चले गए, दोनों ट्विंस की शादी हुई, फिर ये जो इसका जो लड़का था वो ही वापस आता है, एंड वापस अगेन हिज मदर इज स्टिल, वो अभी भी वेश्या है, वो अभी वेश्या, तो उधर पर जाकर वापस उनके साथ रमण करता है और उनका फिर पुत्र होता है। तो संसार में ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं, यहाँ पर किसका संयोग किसके साथ है और कौन पहले किसका क्या था ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली इट इज पॉसिबल कि हमारे आज जो मम्मी पापा हैं वो पूर्व में हमारे पुत्र रहे होंगे, वो हम उनके मम्मी पापा रहे होंगे, या जो हमारी आज पत्नी है वो हमारी पहले बहन रही होगी, जो हमारी माता है वो कभी हमारी पत्नी रही होंगी। ऐसा इस संसार में होता ही होता है, होता ही है। इसके लिए ये वाला संसार बड़ा विचित्र है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी। यहाँ पर वो किंग अभय घोष है, उसने टर्टल को मारा और टर्टल लेट बट वो उसके बेटा हो गया, और अब इन किंग घोष को मुनिराज को वैराग्य आता है, ये दीक्षा धारण करते हैं, अब इनका ही बेटा इन पर उपसर्ग करता है, अब इनके हाथ पैर काट देता है। तो किसका भरोसा है? उनका खुद पहले तो उनका बेटा ही कौन हुआ जिसको उन्होंने मारा था, फिर वो बेटा हुआ और इतने प्यार से इनने उसको रखा, इनने उनको पूरा राज्य दिया, इतनी सारी उनको इतनी वेल्थ दी, एंड अल्टीमेटली दैट सन ऑफ हिम ओनली इज किलिंग हिम। तो इसके लिए संसार, ये चार गति वाला संसार, यहाँ किसी भी संयोग का भरोसा नहीं। हम लोग जिस चीज को लेकर, मतलब जिस हॉस्पिटल में कोई जीव उपचार करने के लिए जाते हैं वहां पर ही, सी व्हाट हैपेंड, एक रियल लाइफ घटना है, ओके, व्हाट हैपेंड इन भोपाल, देयर इज एक बच्चा था, ओके, उसको रात में नींद में चलने की आदत थी, ही यूज टू वॉक इन स्लीप, ओके, अनकॉन्शियसली। तो क्या होता था रात में, अब सुबह सुबह इसकी मम्मी जब देखती थी तो देखती थी बेड में पूरा का पूरा इसकी बॉडी ना, पूरे के पूरे कपड़े गीले रहते थे, तो वो सोचती थी यार ये गीला कैसे हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से पूछा सोसाइटी के, उन्होंने बोला आपका बेटा तो रात को घूमने जाता है कहीं, तो मम्मी घबरा गई। तो उन्होंने रात में इस बार क्या किया, जब बेटा वो ही वॉज लाइक स्टार्टेड वॉकिंग, तो शी फॉलोड हिम साइलेंटली, तो पीछे पीछे उनको फॉलो करने गई, एंड वो गया वहां पर, तो वहां पर एक तालाब था, ओके, देयर इज अ पॉन्ड इन द भोपाल सिटी, तो पॉन्ड में वो वहां पर जाते हैं और देखते हैं उनका जो बच्चा है ना, ये वैसी का वैसा पॉन्ड में उसने छलांग लगा दी, एंड ही स्विमिंग, ओके, इन द ड्यूरिंग द स्लीप, ओके, नाउ ही स्विमिंग, एंड मम्मी को पता था कि यार इसको तो तैरना आता नहीं था, घबरा गई एकदम से, इनका बेटा तालाब पर कूद गया और एकदम से चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ मेरा बेटा डूब जाएगा, क्योंकि इनको पता है इसको तैरना नहीं आता है। He is asleep and he is swimming, okay? एंड चिल्लाने पर उस बेटी की अचानक से नींद खुल जाती है एंड नाउ उसको सही में तैरना नहीं आता था, तो अब वो घबरा जाता है, अरे मुझे तैरना नहीं आता, नाउ ही इज इन साइड पॉन्ड, ही डजेंट नो हाउ टू स्विम, और अब वो डूब जाता है वहीं पर, उसकी डेथ हो जाती है। दिस रिसेंटली हैपेंड इन भोपाल। डू यू सी दिस व्हाट इज हैपनिंग? ही हैज दिस प्रॉब्लम्स, वो स्लीपर चलता है, स्लीपर वो तालाब में तैर कर आ जाता है, तैर कर वापस आता है और वो सो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाता है, उसको भी नहीं पता कि वो तैरना जानता है। उसकी मम्मी जाती है, मम्मी को डर लगता है कि यार मेरा बेटा यदि तैरेगा और वो डूब जाएगा, ठीक है, सो शी वो आउट ऑफ डर बोलती कि अरे इसको कोई बचाओ, एंड एक्चुअली उसकी नींद खुलती है और अब वो सही है, पहले नहीं डूब रहा था और अब वो डूब जाता है। तो इस संसार में ऐसा है कि देखो जिससे चीज जीव लोगों को बचाना चाहते हैं उससे जीव मरते देखे जाते हैं, जिस खाना खाकर अपने आप को हैप्पी मानते हैं उससे ही डायबिटीज हो जाए किसी को, जिस इंजेक्शन को लगाकर वो समझते सही हो जाएगा उससे इन्फेक्शन हो जाता है, जिस सोप को वी पुट ऑन आवर स्किन और जिस क्रीम को वी यूज वो इससे हमें एलर्जी या रिएक्शन हो जाती है। तो इस संसार में किसी भी चीज का भरोसा नहीं, ना चेतन द्रव्यों का ना अचेतन द्रव्यों का। सी मतलब कितना, नाउ डू यू रियलाइज कि वो अपने आप कैसे तैर रहा है? तो नाउ टेल मी, सी अभी तो अपन लोग चलते हैं, राइट? हम लोग चलते हैं ना, अभी मुझे यदि उठना है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो उस बालक को कौन चला रहा है जो कि वो तैर रहा है पानी में, स्विमिंग इन द वॉटर इन द पॉन्ड। सो द बॉडी इज मेकिंग हिज सोल स्विम और ही इज मेकिंग द बॉडी स्विम, वॉट इज हैपनिंग देयर? हेल्प मी थिंक अबाउट इट। सी ड्यूरिंग द डे व्हाइल वी आर कॉन्शियस, तो कौन चलाता है? सोल मेक्स द बॉडी रन, राइट? सोल्स मेक द बॉडी वॉक, राइट? करेक्ट। बट व्हेन आई एम अनकॉन्शियस एंड बॉडी इज स्टिल रनिंग और बॉडी इज स्टिल वॉकिंग और स्विमिंग, हु मेक्स द बॉडी वॉक स्विम और द बॉडी मेक्स द सोल स्विम, राइट? हेलो, डिड यू गेट माई क्वेश्चन?
नो,
यस अनुभव जी,
मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो हम तो दिन में मानते कि यदि मुझको अभी चलना है, इफ आई हैव टू स्विम, तो मैं सोचूंगा, जब मैं सोचूंगा तब बॉडी स्विम करेगी, मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा देन आई विल स्विम, राइट? दैट्स व्हाट वी थिंक। नाउ टेल मी दैट बॉय ही इज स्विमिंग, सो हिज बॉडी इज मेकिंग हिज सोल स्विम और हिज सोल इज मेकिंग हिज बॉडी स्विम। वो सोच रहा है तभी तो हाथ पांव हिल रहे हैं ना, कि अपने आप हिल रहे हैं नींद में, अपने आप हिल रहे हैं हाथ, वो अपने आप स्विम कर रहा है कि उसकी वो सोचता है इसलिए स्विम कर रहा है?
अपने आप
कर रहा है। तो जब बिना सोचे भी बॉडी अपने आप स्विम करती है, तो सोचने के कारण स्विम करती है, ये वाला कैसे बोल सकते हैं हम? जब बिना सोचे भी काम कर सकती है बॉडी, तो मेरे सोचने से बॉडी कोई काम करती है, हाउ कैन वी इन्फर दिस? आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? हेलो, यानी कि जब देखो जब बिना जब उस लड़के को उसको किसी ने स्विमिंग करना सिखाया नहीं था, अपने आप वो सोचता भी नहीं था कि मैं स्विम करूं, स्टिल ही यूज टू स्विम विदाउट नोइंग। सो जब उसको एकदम से नींद खुली और अब वो स्विम नहीं कर पा रहा है, तो लेकिन वो चाहे तो स्विम कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता? बॉडी इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन फंक्शन। तो देखो बॉडी अपने आप चलती है, अपने आप रुकती है, जागते हुए भी सोते हुए भी, ठीक है? इसके लिए ये वाली, अब क्योंकि दूसरी ढाल है ना, इसमें यही वाला विषय चलने वाला है हमारा, सातत्व संबंधी भूल, एक्सीलेंट विषय है वो, हम उसको भी लेंगे। सो नाउ अभी क्या हुआ इसके साथ कि अभय घोष को इसके ही पुत्र ने काट डाला, उसके हाथ पांव काट दिए, बट देखो स्वभाव का बल कि वहां उपसर्ग हुआ, वहां पर बॉडी पूरी कट गई है, फिर भी उन्होंने ऐसा काय उत्सर्ग धारण किया कि वहीं पर ही उन्होंने केवल ज्ञान उपचार लिया और वो मोक्ष चले गए, ठीक है? इसके क्वेश्चन थे, टर्टल इज अ जीव ऑफ त्रियंज गति एंड इसके पास भी फाइव सेंस होते हैं, कछुआ पंचेंद्रीय जीव होता है, किंग इज द जीव ऑफ मनुष्य गति एंड इट हैज ऑल्सो फाइव सेंसेस, ठीक है? नाउ टर्टल डाइज इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, थिंकिंग ऑफ हिज भाव फीलिंग और पैशन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, वॉट आर द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इन दिस सिचुएशन? हम लोगों ने हमेशा समझा था कि जब भी मरण होता है दो काम हम कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो संक्लेश भाव के कारण वो मरे, आर्त ध्यान जिसके कारण वो रोए, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मुझे इतना दर्द हो रहा है, ये वाले ही कारण आप नरक तिर्यंच गति में जा सकते हो। यदि ज्यादा आपको संक्लेश परिणाम है तो आप मनुष्य गति में भी ले सकते हो, यदि आपने निदान कर लिया है। और यदि आप समता धारण करते हो कि चलो कोई बात नहीं कट गया, लेकिन आपका सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो विदाउट ज्ञान आप कषायों को मंद करते हो, उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा, बिना किसी काम की निर्जरा। ओके, द इट्स अ निर्जरा बट इट इज ऑफ नो यूज। सो यू कैन गो टू देवगति भवनत्व और मनुष्य गति, बट इट वोंट गिव यू एनी सम्यक ज्ञान। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। यदि शांति धारण करता वहां पर तो देवगति में चला जाता, जैसे कि वो जलते हुए सांप थे ना, स्नेक्स, जिनको पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया था, उनकी बॉडी पूरी इट गॉट बर्नड, ओके, कंप्लीट बॉडी ऑफ दोज स्नेक्स, बट दे लिसन टू द नमोकार मंत्र, उनका पैशन दैट केम डाउन एंड देयर फोर दे टुक बर्थ एज पद्मावती एंड धर्णेन्द्र, राइट। यहां पर भी इस टर्टल को पूरी बॉडी एकदम कट गई है, स्टिल देयर पैशन आर हाई, बट दे डिड द निदान एंड दे टुक बर्थ एज द सन ऑफ दिस किंग। ओके, सो दैट्स द संक्लेश परिणाम, संक्लेश आर्थ ध्यान। ओके, नाउ चंद्रविक एंजॉयड टेकिंग हिज रिवेंज बाय डूइंग ऑब्जर्व ऑन मॉन्क अभय घोष, विच काइंड ऑफ ध्यान वॉज ही डूइंग? When we become happy on doing the sins, the wrongdoing, it's known as Rodra Dhyan. Rodra Dhyan, iske karan narak gati ka band hota hai, right? Which kind of nirjara monk Abhay Ghosh did? He actually destroyed all his karmas, he attained moksha. By which nirjara do we attain moksha? Abhipak nirjara or sakam nirjara, that we call it. Jo nirjara actually kaam ki hoti hai, samyak gyan ke saath hoti hai. Right? Samjha sabko ye, ye wali case study. Anybody understood any question from this case study? Hello?
Anji.
Anji.
Please either say yes or say no. Everybody had anybody has any doubt on this case study?
Nahi.
Nahi.
Okay. Next is Sansar Darshan. Ye wala chitra hum log ne kai baar discuss bhi kiya hai. इसमें देर इज वन पर्सन हु इज रनिंग, एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर हिम, सडनली कैच अ होल्ड ऑफ अ वन ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री, इन दैट ट्रंक टू रैट्स, ब्लैक एंड व्हाइट रैट, दे आर कटिंग डाउन दैट ट्रंक। अबव हिम देर इज वन, यू नो, मधुमक्खियों का एक पूरा छत्ता है, बीज का, हनी बीज का, एंड वो उसको काट रहे हैं। अचानक से ऊपर देखता है तो उसके मुंह पर एक शहद की बूंद गिरती है, हनी ड्रॉप। नीचे देखता है तो नीचे भी, अब इसके यहाँ पर बहुत सारा कुआ है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्नेक्स हैं। नाउ इसको वो एक बूंद इतनी अच्छी लगी है कि इसके सामने एक देव आता है, वो बोलता है चलो मेरे साथ चलो, और वो उससे बोलता है प्लीज लेट मी टेक वन मोर ड्रॉप ऑफ द हनी, वन मोर ड्रॉप ऑफ द हनी, वन मोर ड्रॉप ऑफ वन वन मोर वन मोर ड्रॉप। तो ऐसे ऐसे करके ये उस देव का टाइम वेस्ट करता है, थोड़ी देर बाद देव चला जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन वॉज डू यू फाइंड द मैन हैप्पी इन हिज प्रेजेंट स्टेट? क्लियरली एविडेंटली वो खुश तो नहीं है, वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी में है, ही इज नॉट हैप्पी। बट द मैन फाइंड्स हिमसेल्फ हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। उसको एक बूंद में इतना मजा आ रहा है कि ही फॉरगॉट अबाउट एलिफेंट, ही फॉरगॉट अबाउट रैट, ही फॉरगॉट अबाउट स्नेक्स, ही फॉरगॉट अबाउट द बाइटिंग्स ऑफ द हनी बीज। ठीक है, सो यस, ही इज डेफिनेटली हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज मिथ्यास। सो इज देयर आंसर इज यस, रीजन बिहाइंड हिज बिलीफ इज वॉट? His desire for one more drop of honey, that is moh, okay? Moh Mahamad Piyo Anadi, Bhool Aapko Bharmat Vadi. Ye wali line thi wo. The Dev in this situation plays the same role as that Shri Guru. Kaun si line thi ye chhe dala ki pehli dal ki? Kahein Sikh Guru Karuna Dhar. कि श्री गुरु करुणा धार कर हमको बुलाते हैं कि अपनी आत्मा को जानो, चार गति के दुख से बचो, ऐसे जैसे कि देव इस जीव को बुला रहे हैं। ठीक है, वॉट इज मेकिंग द मैन टू नॉट लिसन टू दीप? कि हमने क्यों नहीं भगवान की बात अभी तक सुनी? काल अनंत निगोद बाजार क्यों ऐसा हुआ कि वहां पर हमने मोह रूपी मदिरा पी रखी थी, तो हमने इसके कारण, मिथ्यात के कारण उनको कभी सुना नहीं? फिर वॉट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस इफ ही कीप्स देव वेट फॉर टू लॉन्ग? क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंस कि हम यदि आत्मा को नहीं जाने, क्या होगा? या तो अभी हमारे ऐसा तीव्र पाप का उदय आएगा कि हमारे हाथ पांव चलने बंद हो जाएंगे, पैरालिसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हमारी आईज खराब हो सकती हैं, हम चलते ना बने, हमारे ईयर्स खराब हो सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है हमारे आजू बाजू किसी ना किसी को तो हम जानते होंगे ना, जो नहीं देख पाता है, जिसको सुनाई नहीं देता है, जिसको मशीन लगानी पड़ती है। यदि हमने ये वाली बात नहीं सुनी तो वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? हम मर सकते हैं। या फिर हमसे पहले भी हमको ऐसी अरुचि हो सकती है कि हम जिस जैन दर्शन को बोल रहे हैं उसी को कल बुरा बोलने लगे क्योंकि हमें किसी और ने समझा दिया, हमारे इतने अच्छे परिणाम कल को नहीं रहे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे कि जो देव था वो चला जाए, इसकी डाली टूट जाए, इसका वही मरण हो जाए, पेड़ निकाल दे हाथी, इतने सारे कॉन्सिक्वेंस थे। ऐसे ही हमारे साथ कॉन्सिक्वेंस हैं कि यदि हम रहे तो कलि जिनवाणी ना रहे, जिनवाणी रहे तो हम ना रहे, और हम दोनों रहे तो हमारे जिनवाणी पढ़ने का मन ही ना हो। ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं यदि हमने वाली बात को जल्दी नहीं सुना तो। उसके बाद क्वेश्चन था कि कैन यू रिलेट द सिचुएशन ऑफ दिस मैन विद द सिचुएशन ऑफ संसारी चीज इन द फर्स्ट हाल। आप इसमें पूरी चारों चारों गतियों के दुख लिख सकते थे, इसका ऐसा था, तो इसमें जितना भी लिखा है उसके हिसाब से सबको मार्क्स मिले हैं। किसी को क्वेश्चन इस पेपर से, पेपर वॉज लाइक वेरी स्मॉल, बहुत छोटा पेपर था, इसको इंटेंशनली छोटा ही बनाया था, इजी बनाया था। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट ढाल का क्वेश्चन पेपर? तो पहली ढाल सबको समझ में आई, चार गति, नरक गति में छेदन भेदन, मतलब काट देते हैं मार देते हैं, सेमर तरु होता है वहां पर, वहां पर एक वैतरणी नदी है, बहुत ठंडी है बहुत गर्मी है। तिरंज गति में दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय संगी संगी, बांधना मारना काटना, ये सारे दुख। मनुष्य गति में 9 महीने गर्भ में, फिर बाल अवस्था युवावस्था वृद्धावस्था। देव गति में दूसरों की संपत्ति देख देख कर और अपने आयु के लास्ट 6 महीने तड़प तड़प कर मरना, ये सब। ये पहली ढाल में हमने चार गतियों के दुख पढ़े थे। एक्चुअल दुखों के रीजन क्या है वो हम सेकेंड ढाल में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड ढाल पर गुरुदेव श्री का पहला प्रवचन होगा, हम लोग वो सुनेंगे। आप सब लोगों को अपने नोट्स वहां पर, मतलब आप लोग को नोट डाउन करना है और हम उससे स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई और आइडिया हो, आप लोग को किसी और तरीके से कोई और डाउट और किसी और तरीके से पढ़ना हो तो हम वैसे भी कर सकते हैं। क्या होगा, मैं आपको शायद मेल करूं, नॉट एवरी वीक नेसेसरीली, नेक्स्ट वीक तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग सो वी विल नॉट डू, बट आई विल बी मेलिंग यू सम 1 पेजर और 2 पेजर्स जिसमें इंग्लिश केस स्टडीज रहेंगी, आपको वो पढ़कर आना है एंड देन वील बी डिस्कसिंग दोज स्टडीज। वो हमारी रियल लाइफ से रहेंगी, हमारी प्रतिमानियों की कहानियां हो सकती हैं, कुछ और हो सकता है, तो हम जो भी पढ़ेंगे उसका एज अ एविडेंस वो काम करेंगे और हम सबको प्री रीड करके आना है। ओके, इज इट फाइन विद एवरी वन?
ठीक है, आप थोड़ा हिंदी में थोड़ा स्लो बोलो क्योंकि हम लोग को तो समझ में आ जाती है लेकिन बच्चों ऐसे हिंदी नहीं बोलते ना यहाँ।
ओके ओके ओके,
तो थोड़ा क्योंकि आपकी वहाँ क्या होती है कि आप रेगुलर बोलते, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा स्लो हो जाओ बस।
बिल्कुल 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 बिल्कुल,
थैंक यू।
नेक्स्ट टाइम स्लो ही है।
हाँ,
राइट। त्रिजुल, आप लोग को स्टोरी समझी कि बिल्कुल भी नहीं समझी? मैं उसका चार्ट बनाकर डेफिनेटली मेल करता हूँ क्योंकि रिलेशनशिप आप लोग ऐसे यूज टू नहीं हो, मौसा जी मौसी जी और देवर और सौर, तो आई विल ट्राई टू फाइंड एज मेनी एज इंग्लिश वर्ड्स आई कैन फाइंड एंड आई विल देन ड्रॉ द यू नो एरोस के साथ, तो मे बी दैट वुड बी एक्सप्लेनेबल। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, 18 नातों की कहानी, इट्स अ रियल स्टोरी, इट एक्चुअली हैपेंड। ओके, आराधना कथा कोश में ये भी आती है और कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ की टीका में दी हुई है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज अपना अलग से कोई स्वाध्याय स्टार्ट करिएगा, मतलब खुद का, अदर देन द क्लासेज रन बाय मुमुक्षुज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रुप, अदर देन द पाठशाला दैट वी हैव ऑनलाइन। आई लाइक वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू स्टार्ट सम, यू नो इट कैन बी एनी स्क्रिप्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड ट्राई टू रीड 1 or 2 paragraph और 1 or 2 page और जितना भी आपसे हो सके, एंड देन वन लाइक वी कैन कीप अपार्ट 10 minutes फॉर दिस, दैट एवरीबडी ऑफ अस एवरी इन एवरी क्लास विल कंट्रीब्यूट वन, यू नो वन द वन सेंटेंस, यू जस्ट हैव टू स्पीक वन सेंटेंस दैट यू लर्न ड्यूरिंग, लाइक द बेस्ट सेंटेंस दैट यू लर्न ड्यूरिंग द वीक। कैन वी डू दिस? लाइक हम बच्चों की क्लास में तो हर नियम, हम हर क्लास में एक नियम वाला रखते थे एक्टिविटी, आई वॉन्टेड टू डू दिस एक्टिविटी इन दिस क्लास दैट एवरी क्लास एवरी वन हैज टू ब्रिंग वन न्यू वाक्य, एक समसद वाक्य दैट यू केम अक्रॉस वेल यू आर रीडिंग ऑन योर ओन, जो आपने खुद डिस्कवर किया, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक नया फैक्ट हो सकता है कि आपको पता है कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनका चेहरा हाथी के जैसा होता है, कुमानुष होते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कर सकते हैं क्या हम नेक्स्ट क्लास से? लाइक लास्ट 10 मिनट्स विल कीप अबाउट इट। I'm just proposing. So, okay, yes.
So the Keith understood what Anubhavji is asking. He's asking that maybe all of us, including children, parents, auntie, daddies, everybody, start studying one shastra, whatever the shastra you want to study. And maybe you decide on your own, with your own schedule, that I can afford to read 2 paragraphs in entire week for the children. And the parents and older parents, I mean, the grandpas, they can read maybe in a day. So the children, you read whatever you want to, maybe 2 paragraphs in entire week besides and what you are studying in Pachalas on your own. And whatever you studied in that 2 paragraphs, just speak the good one sentence you understood thoroughly and you bring that sentence in the class. And we will all discuss that or whatever Anubhavji wants to do us next. He will tell us that time.
So that would be like, just see, at the same time, we all like, if we are like 7 to 8 people joining, so we'll have 8 people doing Swadhyaya and different things, and we'll have new 8 points. So that would be immense learning, I think. So we can do that. If you say, so okay, can you do it? We'll try it next time. This week you try, get one dialogue. If it goes well next time, we'll do it. Okay? तो हम लोग वैसे ही फॉर्मेट सेम
तो टाइम नहीं मिलेगा बताने का 10 मिनट में हम काइंड ऑफ केस एनालिसिस भी करेंगे ये भी करेंगे तो इतना समय नहीं मिलेगा तो पहले बच्चे से शुरू करेंगे बाद में हम बड़े को लेंगे
ओके वी विल सी एज हाउ इट गोज इन द नेक्स्ट
ओके
वी विल सी उसके बाद तो व्हाट आई एम सेइंग नेक्स्ट क्लास से हम लोग फॉर्मेट हमारा सेम है हम लोग गुरुदेव जी का सीडी प्रवचन सुनेंगे आप सबको नोट करना है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके ज्ञानियों की वाणी हमको समझ में आनी चाहिए ठीक है उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे हम दूसरी ढाल इज सो इंटरेस्टिंग वी हैव सो मेनी केस स्टडीज ऑन दिस एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सो आई होप यू ऑल विल पार्टिसिपेट वेरी वेल एंड एंथुसियास्टिकली ठीक है विल डू जिनवाणी स्तुति रिजुल विल यू मेक अस टू जिनवाणी स्तुति I think Rijul is not here. Okay, हम लोग हाथ जोड़ेंगे आंखें बंद करेंगे निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है नौ बार नमोकार मंत्र